नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों यूहन्ना रचित सुसमाचार से अध्ययन कर रहे हैं और अपने पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यीशु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वह 5 रोटी और 2 मछलियों से 15,000 लोगों को भोजन करा सकता है। वह पानी पर चल सकता है और संकट कैसा भी क्यों ना हो, वह हमारे साथ उपस्थित होता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व कि हम अध्ययन करें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे, ताकि आज के वचन के द्वारा हम उसके महान आशीषों को प्राप्त कर सकें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। क्योंकि जब हम इस संसार की ओर अपनी नज़रों को उठाकर देखते हैं, हम पाते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास ऐसा समय नहीं है कि वे आपके वचन को सुने और उसका अध्ययन करें, लेकिन आपने हम सबको यह समय दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय जब हम आपके जीवित वचन से सीखना चाहते हैं, आपके वचन से विचार विमर्श करना चाहते हैं। हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रता पन दें ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो हम उसे समझने पाए, और इतना ही नहीं हम उसे अपने हृदय में उतारने पाए और आपके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो किसी न किसी रूप में दुखी हैं, निराश में हैं, चिंता और परेशानियों में हैं। हो सकता है कि वे बीमार हैं, हो सकता है आर्थिक तंगी से दबे हुए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, पारिवारिक समस्याओं में हैं। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि कीजिए, उन्हें इस बात को समझने में मदद कीजिए कि आप प्रभु हैं और सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों में है। आप पानी पर चल सकते हैं, आप मुर्दों को जिला सकते हैं, आप असंभव को संभव कर सकते हैं, आप उनके जीवन में भी बदलाहट ला सकते हैं यदि वे आपकी ओर निहारते हैं, आपकी ओर आते हैं, आपसे मांगते हैं। हाँ प्रभु, इस समय हम हरेक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रत्येक से आप बोलिए और बातचीत कीजिए, हरेक की सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिताजी इस समय के लिए, इस वचन के लिए जो आज आप हमें देने पर हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज के इस अध्ययन में यीशु हम पर अपनी सच्चाई प्रकट करेगा जो हमारे अनंत जीवन के लिए अति आवश्यक वरन अनिवार्य है। आइए देखें कि वह जीवन की रोटी है। जन समूह यीशु की खोज में है क्योंकि यीशु अपने शिष्यों के साथ चला गया था। तब हम आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 22 से 24 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर न चढ़ा परंतु केवल उसके चेले चले गए थे। तो भी और छोटी नावें तिबरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। सो जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह जन समूह गलील सागर के दक्षिणी भाग का था, जो भोजन करने के बाद अगले दिन वे नाव से गलील सागर पार करके कफरनहूम आए। यहाँ पहली बार यूहन्ना प्रभु शब्द का उपयोग करता है। यूहन्ना यीशु के लिए प्रायः यीशु नाम ही काम में लेता है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ चुके हैं। यह वचन कौन है? मत्ती कहता है, जिसे हम 1 अध्याय के 21 पद में पाते हैं, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का पाप से उद्धार करेगा। जन समूह जिज्ञासु था कि यीशु कैसे वहां से लोप हो गया। तब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6 अध्याय उसके 25 और 26 पद में लिखा हुआ है, और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रबी, तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। वह उनकी खोज के पीछे छिपी उनकी मनसा को भांप गया था। उनका स्वार्थ केवल पेट भरना था। हम आगे देखते हैं यूहन्ना 6 उसके 27 पद में, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि यीशु ने सुखार में सामरी स्त्री को भी यही कहा था, चाहे उसने उस समय पानी के संदर्भ में सच्चाई प्रकट की थी। पानी और भोजन जीवन के आवश्यक तत्व हैं। इसके बिना कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यीशु जीवन के अनिवार्य तत्वों द्वारा हमें सच्चाइयों को समझाता है। वही जीवन का ढाल है और वही जीवन की रोटी है जो अनंत जीवन के लिए आवश्यक है। यह पोषण अनश्वर है जबकि सांसारिक रोटी और पानी नाश हो जाते हैं। हम यूहन्ना 6 उसके 28 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। ध्यान दीजिए, मनुष्य की अपनी समझ यह है कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थात उद्धार पाने के लिए कर्म करे, और वह सोचता है कि वह सक्षम है, कि वह ऐसा कर पाएगा। अतः यीशु उन्हें कुछ करने को कहता है, जिसे हम यूहन्ना 6 अध्याय के 29 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मित्रों, बहुत ही रुचिदायक बात है, कर्म परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य को केवल एक ही काम करना है कि उस पर विश्वास करे जिसे उसने भेजा है। परमेश्वर ने भोजन का प्रबंध कर दिया है, हमें केवल उसके भागी होना है। उसका भोज निर्मोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, परंतु वह आत्मिक भोजन है। आज बहुत सारे लोग आत्मिक भोजन खाना तो चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते। आज प्रभु यीशु मसीह भी उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 6 उसके 30 पद में, इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें। तू कौन सा काम दिखाता है। वे यीशु के हाथ से चमत्कारी भोजन करके भी चिन्ह मांग रहे थे। यह मनुष्य के मन की कठोरता है। आज भी हम ऐसा ही कई बार करते हैं, अपनी आंखों से हर एक चमत्कारों को देखते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार कार्य किए, फिर भी हम उससे चिन्ह की आशा करते हैं। हम यूहन्ना 6 अध्याय उसके 31 से 33 पद में आगे पढ़ते हैं, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग में से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग में से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यहां पर ध्यान दीजिए, मूसा ने नहीं, परमेश्वर ने उन्हें जंगल में प्रतिदिन मन्ना खाने को दिया था। अतः वे यीशु से भी ऐसी ही आशा करते थे। यीशु आत्मिक भोजन देता है, मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 6 अध्याय उसके 34 पद में, लिखा हुआ है, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यही समस्या उस सामरी स्त्री के साथ भी थी। वह चाहती थी कि यीशु उसे ऐसा जल दे, ऐसा पानी दे जो समाप्त न हो, और उसे दोबारा उस जगह पर आना न पड़े जिससे कि उसे बार बार कुएं पर पानी भरने आना पड़े। यीशु को उसकी बुद्धि नीचे से ऊपर उठाने में समय लगा कि वह जीवन जल को समझे कि वह क्या कहना चाहता है। मेरे मित्रों, इसी प्रकार यहां भी यीशु उन्हें भोजन तख्त से उठाकर आत्मिक जीवन दायक आत्मिक रोटी के लिए तैयार कर रहा है। हम यूहन्ना 6 उसके 35 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भी प्यासा न होगा। कितना महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना दिया, परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से यीशु दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह क्रूस पर मर गया कि हम न मरे। वह जीवन की रोटी है जिसके द्वारा हम आत्मिक विकास पाते हैं। प्रतिज्ञा के देश में आने पर इसराइल को वहां का मक्का खाने को मिला, जो परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। मित्रों, अनेक मनुष्य पुराने मक्का को खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो खाना भी चाहते हैं। हम यूहन्ना 6 उसके 36 और 37 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मित्रों, यहां पर हम पाते हैं कि वह उन्हें कभी नहीं निकालेगा। वह कहता है, तुम्हें रोटी चाहिए, मैं जीवन की रोटी हूं, तुम मुझे देखते हो परंतु विश्वास नहीं करते। पिता मुझे जो कुछ देता है वह मुझे मिलेगा, जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी भी नहीं त्यागूंगा, अर्थात उसे कभी भी दूर नहीं करूंगा। यह पद 37 एक महत्वपूर्ण पद है। इस पद में चुनाव और स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्र इच्छा दोनों ही विहित है। पिता ने मुझे जो कुछ दिया है वह मेरे पास है, यह एक तथ्य है और चुनाव है। जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं त्यागूंगा अर्थात कभी नहीं निकालूंगा, यह स्वतंत्र इच्छा है। पिता परमेश्वर मनुष्यों को यीशु के पास भेजता है, परंतु मनुष्य को उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा दे रखी है कि वह यीशु के पास आए, या दूसरे शब्दों में जो यीशु के पास आते हैं वे परमेश्वर के भेजे हुए ही होते हैं। हम नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे काम करता है, परंतु यह जानते हैं कि उसने आपको और मुझे स्वतंत्र इच्छा दी है जिसका सदुपयोग करना हमारा उत्तरदायित्व है। आप भला या बुरा दोनों में से किसी को चुन सकते हैं। आपके ऊपर में कोई दबाव नहीं है, आपको किसी रोबोट की तरह नहीं बनाया गया है, आपको खुद चुनाव करना है। एक प्रसिद्ध प्रचारक स्वर्जन जो चाहे सुसमाचार का प्रचार करते थे, किसी ने उनसे कहा, यदि मैं चुनाव के बारे में आपके समान विश्वास रखता तो ऐसा प्रचार नहीं करता। स्वर्जन ने कहा, यदि परमेश्वर ने चुने हुओं की पीठ पर पीली धारी डाली होती तो मैं सड़क पर जाकर सबकी कमीजें उठा उठा कर वह पीली धारी देखता, तब उन्हें सुसमाचार सुनाता। परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, उसने मुझसे कहा कि सबको सुसमाचार सुनाओ कि वे चाहे जो भी हो यीशु के पास आ जाएं। मित्रों, यीशु कहता है कि जो उसके पास आएगा उससे वह त्यागेगा नहीं अर्थात उसे नहीं निकालेगा। अतः मेरे मित्रों, आज आप परमेश्वर के चुनाव के बारे में जितना चाहे विवाद कर लें, परंतु यदि आपकी इच्छा हो तो यीशु के पास आ जाएं, वह आपका त्याग कभी भी नहीं करेगा। जो आ गया वही चुना हुआ है। हम यूहन्ना 6 अध्याय उसके 38 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप यीशु के पास आ जाएं। कैसी महान बात है यह। यीशु स्वर्ग से आया क्योंकि मनुष्य के पुत्र का ऊंचा उठाया जाना आवश्यक था। वह पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया था। पिता की इच्छा यह है कि आप नया जीवन पाएं। इसके लिए आपको यीशु के पास आना ही होगा। मेरे मित्रों, यही एक मार्ग है। इसके अलावे आप किसी भी रीति से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु ही है। हम यूहन्ना 6 उसके 39 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। मेरे मित्रों, पूर्व नियति केवल विश्वासियों के लिए है। इसका अर्थ यीशु यहां स्पष्ट करता है, जब कोई मसीह को ग्रहण करता है तब वह धर्मी ठहराया जाता है, और जिस प्रकार वह धर्मी ठहराया जाता है उसी प्रकार उसकी महिमा भी होती है। यीशु के पास 100 भेड़े हैं तो उसके पास पूरी 100 भेड़े सदा रहेंगी, एक भी भेड़ कम नहीं होगी। मसीह यीशु में विश्वास करके उसे ग्रहण करने वाले को अनंत जीवन प्राप्त है, और वह अंतिम दिन फिर जी उठेगा अर्थात वह नाश नहीं होगा। हम यूहन्ना 6 अध्याय उसके 41 और 42 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। 42 पद में, और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह क्यों कर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। ध्यान दीजिए, यीशु ने स्पष्ट कहा कि वह स्वर्ग से आया और वह परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ वह अपना जन्म कुंवारी से होना भी प्रकट करता है। यहूदी उसकी बात समझ गए थे, अतः उन्होंने कहा कि वे तो उसके माता पिता को जानते हैं, तो वह स्वर्गी कैसे हो गया, कैसे वह कहता है कि वह स्वर्ग से उतरा है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ कि मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया। हम लूकार्ची सुसमाचार एक अध्याय उसके 35 पद में इसे पढ़ते हैं। यह अंश पद 38 से आगे का है। वास्तव में यीशु के जन्म के वृतांत में जोड़ा जाना चाहिए था, वह स्वर्गिक महिमा को छोड़कर पृथ्वी पर आया कि आपके और मेरे लिए क्रूस पर चढ़े। गाना बजाना और राग रंग बड़ा दिन नहीं है मेरे मित्रों, बड़ा दिन यीशु का कुंवारी से जन्म लेना है। उनका भ्रम यह था कि वे यीशु के माता पिता को जानते थे, परंतु वह यीशु का पुत्र नहीं था, वह तो स्वर्ग से आया था और परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। हम यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय उसके 43 और 44 पद में आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, ईश्वरीय चुनाव यही है। मूल में इसका अर्थ है खींचना। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, मैं केवल यह कह सकता हूँ कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है जिसके लिए परमेश्वर आपको उत्तरदायी ठहराता है। मसीह के पास आना या ना आना आपकी अपनी इच्छा है, और यही कारण है कि आज संसार में बहुत से लोग मसीह पर विश्वास करते हैं और बहुत से लोग सब कुछ जानते हुए भी उसके पास आना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम यूहन्ना 6 अध्याय उसके 45 पद में पढ़ते हैं, भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। ध्यान दीजिए कि इसके धर्मशास्त्र में अनेक संदर्भ हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 54 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। फिर हम देखते हैं यशायाह 60 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। उसके पास सब जातियां आएंगी जिसमें हम भी हैं। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। मेरे मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य जो पिता की वाणी सुनता है और वचन से सीखता है वह यीशु के पास अवश्य आएगा, और यही महत्वपूर्ण बात है कि आप यीशु के पास आते हैं। हम यूहन्ना 6 अध्याय उसके 46 और 47 पद में आगे पढ़ते हैं, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। किसी ने पिता परमेश्वर को नहीं देखा है, तो वह केवल यीशु ही है, और वह कहता है कि हम उसमें विश्वास करके अनंत जीवन पाते हैं। इससे अधिक और क्या चाहिए। मेरे मित्र, आज इस संसार में लोग उद्धार पाने के लिए क्या नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सरल उपाय परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया कि हम सिर्फ यीशु पर विश्वास लाएं और उद्धार को मुफ्त में प्राप्त करें। क्या आप उसे पाना चाहते हैं। हम यूहन्ना 6 अध्याय 48 से 51 पद में पढ़ते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। वह स्वर्ग से आया और देहधारी हुआ, जिसे हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14 में पढ़ा था, और वह क्रूस पर इस देह को बलिदान किया कि आपके पापों का दंड चुकाए। इसे स्वीकार करके आप उद्धार पा सकते हैं। मित्रों, अब आप कहेंगे यह तो बहुत कठिन है। वे भी यही कहते थे। हम यूहन्ना 6:52 में पढ़ते हैं, इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। ध्यान दीजिए, उनकी बुद्धि में केवल उसकी देह का ही विचार था और कुछ भी नहीं। यूहन्ना 6:53 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लोहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब है आत्मिक सहभागिता जो शारीरिक संगति से अधिक वास्तविक है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमारे लिए बहुत स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के बदले में क्रूस पर चढ़ाया गया। वह हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए, ताकि हम जीवन पाएं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब हम उसे ग्रहण करते हैं, अर्थात उसे हम स्वीकार करते हैं, उसके सामने अपने पापों को मान लेते हैं, तो हम आत्मिक सहभागिता उसके साथ रखते हैं। हमारे जीवन में उद्धार का आनंद होता है। क्या आज आप इसे पाना चाहते हैं? आपके पास स्वतंत्र इच्छा है। आप उसके पास आ सकते हैं और आप उसके पास नहीं भी आ सकते हैं। निर्णय आपको लेना है। आइए आज हम अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं और आज के इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांच कर देखें कि आज हम कहां पर हैं। ऐसा सुंदर मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। मेरे मित्रों, क्यों ना आज हम प्रभु यीशु के पास आए और उसे ग्रहण कर लें और अपने जीवन में उस उद्धार को प्राप्त करें जिसे प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मसा कर, मुझे मसा कर, रूसे यसु मुझे मसा कर, मसा कर, मुझे मसा कर, रूसे यसु मुझे मसा कर, हाथों को मेरे, मुंह को मेरे, मसा कर यसु, मसा कर, मसा कर, मुझे मसा कर, रूसे यसु मुझे मसा कर, हाथों को मेरे, मुंह को मेरे, मसा कर, मुझे मसा कर। बसा कर मेरे दिल को मैं।